ओम शांति। पिछले राजयोग अभ्यास के सत्रों में आपने समझा है योग अर्थात संबंध या मिलन। जैसे हम वियोग शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ होता है अलग हो जाना या बिछोड़ना। तो योग शब्द संबंध के अर्थ में प्रयोग होता है। ये संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है। ऐसे ही हम सहयोग भी कहते हैं, तो जब दो मिलकर कार्य करते हैं तो उसे हम सहयोग कहते हैं। और जब राजयोग कहते हैं तो राजयोग शब्द का अर्थ है जो सर्वश्रेष्ठ संबंध है, और सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है। तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमात्मा है, ईश्वर के साथ संबंध को हम राजयोग कहते हैं। इसे राजयोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है, और इस योग के द्वारा हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, अर्थात हम स्वयं के राजा बनते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनने लगते हैं। सामान्यतः हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी नहीं होते, कर्मेंद्रियों के वश होते हैं। कभी हमें आंखें धोखा देती हैं, कभी मुख धोखा देता है। इसका अर्थ है कि जो हमें नहीं कहना चाहिए, कई बार हम वो शब्द कहते हैं जो नहीं देखना चाहिए वो हम देखते हैं। कभी कान से धोखा मिलता है, तो कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार नहीं होता है। हम जैसे चाहें वैसे कर्मेंद्रियों से कार्य करें और सदा सफल हों, लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हम स्वराज्य अधिकारी बनने लगते हैं। फिर इसे राजयोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें अनेक राज समाये हुए हैं, और उन राजों को समझने के बाद ही हम राज्यों का अभ्यास कर पाते हैं। स्वयं का राज, स्वयं का सत्य परिचय आपने प्राप्त किया, परमात्मा का राज यानी परमात्मा का जो सत्य परिचय है, जब हम वो समझते हैं उस परिचय के आधार पर ही हम परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हैं। और ये राजयोग अनेक योगों का समन्वय है। भारत में 7 प्रकार के योग मुख्य रूप से किए जाते हैं। ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, हठ योग। राजयोग इन सभी योगों का फल देने वाला है। अगर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमें अन्य कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान योग है क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान अर्थात समझ। इसमें हम जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा पिता कौन है, और इस राजयोग का अभ्यास करने से मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है। इस ज्ञान के आधार पर हम योग अभ्यास करते हैं। इसमें अंधश्रद्धा नहीं है, इसीलिए ये ज्ञान योग है। ये बुद्धि योग भी है क्योंकि हम मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा को याद करते हैं। मन बुद्धि को हम अंतर चक्षु भी कहते हैं, अर्थात जो हमें इन दो चक्षुओं से नहीं दिखाई देता वो हम अंतर चक्षु से अनुभव करते हैं या देखते हैं। आत्मा और परमात्मा के विषय इन स्थूल चक्षुओं से देखने के विषय नहीं है। मन वो माध्यम है जिसके द्वारा हम आत्मानुभूति और परमात्मा अनुभूति करते हैं। आज विज्ञान के साधनों में भी हम अदृश्य माध्यमों का प्रयोग करते हैं या उनका अनुभव करते हैं। आप मोबाइल यूज करते हैं तो हम यहाँ बैठे हुए भारत के किसी भी कोने में या पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बातचीत कर सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं के भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखने में कोई ऐसा दृश्य कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमारे सेट से कुछ तरंगे निकलती हैं जो दूसरे सेट तक पहुंचती हैं टावर से ट्रांसमिट होते हुए, और फिर हम उसे रिसीव भी करते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, हमारी आंखों की क्षमता से वो परे है क्योंकि वो सूक्ष्म है। ऐसे ही जब हम मन में ईश्वर के प्रति चिंतन करते हैं तो वो विचार तरंगे अदृश्य हैं, लेकिन वो ईश्वर तक पहुंचती हैं और हम उनकी शक्तियों का अनुभव भी करते हैं। सामान्यतः भक्ति में भी जब हम भगवान की पूजा करते हैं या स्तुति करते हैं, हम जिस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, हमें मालूम होता है कि वो मूर्ति तो नहीं सुन रही है, क्योंकि मूर्ति तो जड़ है, लेकिन फिर भी हम ये महसूस करते हैं कि मेरे मन की बात भगवान जहां भी है वहां पहुंचेगी, और जब वो बात पूरी होती है तब हम अनुभव करते हैं कि भगवान ने मेरी सुनी। तो किस माध्यम से सुनी, वहां भी मन ही माध्यम है। तो मन और बुद्धि ये हमारे अदृश्य माध्यम है जिसके द्वारा हम परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हैं। ऐसे ही राजयोग कर्म योग है, कर्म करते हुए परमात्मा की याद रहे, और यदि हम निमित्त भाव से कर्म करते हैं, ट्रस्टी भाव से कर्म करते हैं, कर्तापन के भाव से मुक्त होकर कर्म करते हैं, जैसे हम मैंपन और मेरापन कहते हैं, तो फिर हम उसे कर्मयोग कहते हैं। हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, ये जो हमारे दैनिक कर्म है जो हम अवश्य करते हैं, इन कर्मों को करते हुए भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम बहुत व्यस्त होते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो भगवान को याद करने का कोई विशेष समय है ही नहीं, हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं। या योग अभ्यास के लिए कहा जाता है तो भी एक बहाना होता है कि हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन ये जो दैनिक कर्म है, कितना भी व्यस्त होता है मनुष्य, लेकिन उसे वो करना ही है। और राजयोग तो सहज भाव से स्नेहपूर्ण परमात्मा की याद है। किसी को भी हम चलते फिरते भी याद कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान को भी हम चलते फिरते भी याद कर सकते हैं, और इसीलिए राजयोग कर्म योग है। और जब हम कर्म करते हुए भगवान को याद करते हैं तो वो कर्म हमारे सत्कर्म हो जाते हैं। सत्कर्म कहने का भाव ये है कि वो एक कर्म हमें पदम गुना फल देने वाला होता है। कर्मों की तुलना हम बीज से करते हैं, कहते हैं जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, या जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। तो सामान्यता जो कर्म सिद्धांत होता है वो इस प्रकार से चलता है कि एक का एक, जैसे हम बीज भी बोते हैं फल प्राप्त करने के लिए, तो उसमें कई प्रकार के बीज होते हैं। मानो अगर हमने कोई फसल बोई है, गेहूं का बीज बोया है या टमाटर है या मिर्ची है, जो भी आप वो डालते हैं, तो एक बीज से एक फल नहीं मिलता, अनेक फल मिलते हैं और अनेक बीज हो जाते हैं, लेकिन वो एक सीजन तक होता है। लेकिन अगर हमने आम का बीज बोया है या नारियल का बीज बोया है, तो वो एक बीज से फल आने में हमें इंतजार करना पड़ता है, कुछ वर्षों का इंतजार होता है। लेकिन जब वो फल मिलना शुरू होता है तो फिर एक से अनेक ही नहीं, लेकिन अनेक वर्षों तक और पीढ़ियां भी उस फल को खा सकती हैं। वो इतना अधिक फल देने वाला होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे ही जो राजयोग का अभ्यास करते हुए या परमात्मा की याद में हम कर्म करते हैं, वो केवल इस जन्म ही हमें फल देने वाले नहीं होते, लेकिन वो संचित कर्म होते हैं और वो भाग्य हमें प्रारब्ध के रूप में अनेक जन्मों तक प्राप्त होता है। से ही राजयोग भक्ति योग भी है। भक्ति का अर्थ होता है भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण भाव, और ये भाव संबंधों में होते हैं। और इसलिए हमने देखा कि जो भी अनन्य भक्त हुए हैं आज हमारे इतिहास में, उन्होंने भगवान के साथ कोई ना कोई विशेष संबंध का अनुभव किया है, और उस संबंध से याद करते हुए परमात्मा ने आवश्यकता पड़ने पर उनके साथ वो संबंध निभाया भी। जैसे प्रहलाद ने उसे पिता के रूप में याद किया, सूरदास ने मित्र के रूप में याद किया, अहिल्याबाई ने उन्हें पुत्र के रूप में याद किया, मीराबाई ने पति के रूप में याद किया, अर्जुन ने भी मित्र के रूप में याद किया। तो जब आवश्यकता हुई, जैसे प्रहलाद पर जब संकट था और उसे मार देने का प्रयास किया जाता रहा, तो हर बार भगवान ने पिता के रूप में उसकी रक्षा की। ऐसे ही मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया तो भी परमात्मा के द्वारा उसकी रक्षा हुई। तो राजयोग में भी हम परमात्मा को संबंध से याद करते हैं, इसलिए भक्ति योग भी है। वैसे भी हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वमम, यानी तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु सखा हो, शिक्षक और सतगुरु भी हो, और परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। तो एक ईश्वर ही ऐसा है जिसमें हम एक में सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में हम ऐसा अनुभव नहीं कर सकते, माता अलग होगा, पिता अलग होगा, शिक्षक अलग होगा, गुरु अलग होगा, मित्र अलग होंगे, भाई बहन अलग होंगे, लेकिन परमात्मा में वो शक्ति है कि वो एक ही हमें सर्व संबंधों का अनुभव या सुख दे सकते हैं। तो अभ्यास के दौरान हम ये अनुभव करते हैं, इसलिए राजयोग भक्ति योग है। राजयोग संन्यास योग भी है। सामान्यतः भारत में संन्यास माना जाता है जब हम घर बार छोड़कर या जो भी संन्यासी बनते हैं वो घर बार का सांसारिक जीवन का त्याग करके किसी तीर्थ स्थान पर या किसी पहाड़ी स्थान पर जंगल में आश्रम बनाकर रहते हैं और अपना जीवन परमात्मा की याद में व्यतीत करते हैं। और इसीलिए जब अध्यात्म की बात होती है या ज्ञान और योग की बात होती है तो एक भ्रम या एक भय मन में उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें घर बार छोड़ देना पड़ेगा, या हमें संबंधों का त्याग करना होगा, या हम अपने कर्मों का त्याग करेंगे। लेकिन राजयोग में परमात्मा हमें इस तरह का संन्यास नहीं सिखाते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने संबंध निभाते हुए, अपने कर्तव्य और जिम्मेवारी निभाते हुए बुराइयों का संन्यास ही बेहद का संन्यास है। जो बुराइयां हमें जीवन में दुख देती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये ऐसी बुराइयां हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। वो विधि हमें मिलती है, वो शक्ति हमें मिलती है कि हम इनका त्याग कर सकें। यदि कोई संन्यास करता है, दुनिया छोड़ देता है, लेकिन फिर भी अगर वो बुराइयां नहीं छोड़ पाता तो वो संन्यास भी व्यर्थ है। लेकिन संसार में रहते हुए अगर हम बुराइयों का त्याग करते हैं तो ये सबसे बड़ा संन्यास है। राजयोग समत्व योग भी है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, इन स्थितियों से हम सभी गुजरते हैं। कभी जीवन में सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी हमारी प्रशंसा भी होती है तो कभी हमारी ग्लानी भी होती है। लेकिन यदि हम हर स्थिति में संतुलित रह पाते हैं, शांत रह पाते हैं, धैर्य रख पाते हैं, तो उसे स्थिर चित्त कहा जाता है। ऐसे नहीं कि दुख में बहुत दुखी, निराश हो गए, अशांत हो गए, परेशान हो गए, और सुख में हमें बहुत अहंकार हो गया। तो मन विचलित होना, ये विचलित होना हमें दुखी करता है। तो स्थिर चित्त, जिसे गीता में भी कहा गया समत्व योग, ये राजयोग के द्वारा स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। राजयोग की स्थिति ये नहीं है कि जीवन में कोई चमत्कार होने लगेंगे। कई बार ऐसे भी मनुष्य अनुभव करते हैं कि हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो बहन जी क्या हमें कोई विशेष सिद्धियां प्राप्त होंगी, क्योंकि दुनिया में जब संत और महात्मा योग अभ्यास करते हैं तो वो कभी कभी इस प्रकार की सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। वो कोई मंत्र जपते हैं या बबूत देते हैं किसी को और कहते हैं कि आपका जो रोग है वो निवारण हो जाएगा या जो प्राप्ति है वो आपको हो जाएगी, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो ऐसा होता भी है कई बार कि सचमुच उनका रोग ठीक होता है या उनकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये जो होता है ये उनकी आस्था का परिणाम होता है, उनका जो गहरा विश्वास होता है। ऐसे नहीं कि कोई भभूत से किसी का कोई रोग दूर हो जाता है। और जो सच्चे संत हुए उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार के चमत्कारों और सिद्धियों को, जो कि अल्पकाल की होती है, उन्हें महत्व नहीं दिया, क्योंकि उससे व्यक्ति को नाम प्रसिद्धि धन अवश्य मिलता है लेकिन उससे समाज का कोई कल्याण नहीं होता या किसी का कोई जीवन परिवर्तन उससे नहीं होता है। जैसे स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना है, एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और वो अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे। कहा, आपके आश्रम के पास ये जो नदी है इसे मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कितना समय लगा इस सिद्धि को प्राप्त करने में। तो उन्होंने कहा 12 वर्ष का समय लगा। तो स्वामी रामतीर्थ चुप रहे उस समय, कुछ नहीं कहा उन्होंने। और थोड़े समय के बाद उनका दूध वाला जो नदी पार गांव से आता था वो आया और उन्होंने उन सन्यासी के सामने ही उस दूध वाले से पूछा कि तुमने कितने पैसे में नदी पार की। तो उसने कहा 1 पैसे में। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो, जो काम मेरा दूध वाला 1 पैसे में कर सकता है उस काम को करने में आपने 12 साल लगा दिए, और आपने सन्यास क्यों किया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए आपने सन्यास किया है और यही समय अगर आपने ईश्वर प्राप्त करने की साधना में बिताया होता तो अभी आप परमात्मा की समीपता का अनुभव कर रहे होते। तो जो सच्चे संत हुए उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियों को जीवन में महत्व नहीं दिया। तो भले ही संसार में चमत्कार को नमस्कार करते हैं लेकिन राजयोग में इस प्रकार के चमत्कारों को महत्व नहीं देते, लेकिन जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, हमारा जीवन ही श्रेष्ठ बन जाए, कर्म श्रेष्ठ बन जाए, वो सबसे बड़ी सिद्धि है। ऐसे ही राजयोग हठ योग भी है। दुनिया में हठ योग है योगासन प्राणायाम करना, जैसे अष्टांग योग कहते हैं उसमें योगासन प्राणायाम को भी महत्व दिया गया है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अवश्य लाभदायक है। और स्वास्थ्य के कारण इस प्रकार का योग लोकप्रिय भी बहुत हो रहा है। तो यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से करते हैं तो वो उत्तम है, लेकिन राजयोग इस प्रकार का हठ योग नहीं है। राजयोग में हम ईश्वर के संबंध का अनुभव करते हुए मन की शांति और एकाग्रता का अनुभव करते हैं, ईश्वर की समीपता का अनुभव करते हैं। और हठ करने का अर्थ ये भी होता है जैसे कोई दृढ़ संकल्प करता है या एक प्रकार की जिद, जिसे हम हठ कहते हैं। तो भक्ति में लोग ईश्वर से हठ करते हैं कि मुझे ईश्वर का दर्शन हो या मेरी मनोकामना पूरी हो, उसके लिए वो अनेक प्रकार के साधनाएं करते हैं। मानो नवरात्रे हैं तो वो 9 दिन बिल्कुल अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक देवी का दर्शन नहीं होगा या जब तक मेरी ये मनोकामना देवी पूर्ण नहीं करेंगी तब तक हम इस तरह की आराधना करेंगे, या बिल्कुल साष्टांग करते हुए वो कई 100 किलोमीटर तक देवी के दर्शन के लिए जाएंगे या एक टांग पर खड़े होकर के आराधना करेंगे। ऐसे कई प्रकार के हठ भगवान के साथ हम करते हैं कि भगवान जब तक मेरे लिए ये कार्य नहीं करेंगे तब तक हम ऐसा करेंगे। लेकिन राजयोग में हम इस प्रकार का हठ नहीं करते हैं। हम जीवन परिवर्तन के लिए कोई दृढ़ संकल्प करते हैं। मुझे आज सारा दिन चाहे कोई भी कारण बने गुस्सा नहीं करना है। जैसे हम व्रत रखते हैं तो हम पूरे दिन ये संकल्प रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आज भोजन नहीं करना है या मुझे जल नहीं पीना है। फिर कैसे भी परिस्थिति हो हम पूरी तरह से उसको निभाते हैं, नहीं तो हम सोचते हैं कि भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे अगर हमने उस व्रत को तोड़ दिया। तो यहां भी हम इस तरह का व्रत लेते हैं जो सूक्ष्म व्रत है, जो हमारे जीवन के लिए है कि चाहे जो भी स्थिति उत्पन्न हो मुझे आज गुस्सा नहीं करना है। तो इस प्रकार से दृढ़ संकल्प से हम जीवन परिवर्तन करते हैं। राजयोग इस तरह से हठ योग भी है और हमें सभी योगों का फल देने वाला है। राजयोग हम कहेंगे कि एक प्रकार से पावर हाउस से हमारा संबंध अनुभव कराता है, और जैसे किसी बैटरी को जब हम सोर्स से लगाते हैं तो वो चार्ज होने लगती है, ऐसे ही आत्मा का संबंध जब उस पावर हाउस से होता है तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है, यानी हम शक्तिशाली बनने लगते हैं और जीवन पर हमारा नियंत्रण आने लगता है। हम सभी भगवान को याद करते हैं और अपनी अपनी विधियों से हम भगवान को याद करते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं होता है भारत में तो विशेष जो भगवान को नहीं मानता हो और याद नहीं करता हो। आप में से कोई है ऐसे जो भगवान को याद नहीं करते हो? तो हाथ उठा सकते हैं। हम सभी याद करते हैं लेकिन हम सबकी विधियां अपनी अपनी है। सामान्यतः हम 3-4 विधियों का प्रयोग करते हैं। हम मूर्ति के सामने होते हैं और अपनी कोई स्तुति करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, या वो हमारा रोज का नियम होता है कि हमें अपना दिन प्रारंभ करने से पहले भगवान के लिए ये कुछ मिनट अवश्य साधना करनी है या स्तुति करनी है। कुछ लोग माला जपते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं और कुछ लोग अपनी तरह से, मानो अगर सिख हैं या अन्य धर्म के हैं तो वो अपनी रीति से भगवान को याद करते हैं। तो हम जो भी ये आधार प्रयोग करते हैं ये सारे स्थूल आधार हैं। हमारा मन सूक्ष्म है और ये स्थूल आधार हमारे सूक्ष्म मन को परमात्मा में नहीं लगा पाते और हमारी ये शिकायत होती है कि मन भगवान में नहीं लगता है। हम कोशिश जरूर करते हैं लेकिन 5 मिनट भी हम पूरी तरह से अपने मन को भगवान में एकाग्र नहीं कर पाते हैं, अर्थात हमारी विधि में कहीं ना कहीं कमी है। हम जो माला जपते हैं, मानो माला जप रहे हैं तो लोग मन के फिराते हैं भगवान का नाम लेते हुए। स्थिति क्या होती है कि हाथ मन के फिराता रहता है और मन भी फिरता रहता है, ऐसा ही होता है ना। दूसरे दूसरे काम हमें याद आते रहते हैं मन के अंदर, इसलिए कबीर दास जी ने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का फेर। कि माला फेरने की बात नहीं है, वास्तव में मन के फेरने की, मन परिवर्तन हो जाए उसकी बात है। फिर अगर हम मंत्र जाप करते हैं, आज के समय में ऐसा भी है, जीवन में कोई संकट आया, कष्ट आया तो लोग अनेक विधियां बताते हैं, आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपका ये संकट दूर हो जाएगा। और जो भी मंत्र होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, कहा जाता है इतनी बार इसका जाप करना है, 108 बार करना है या 1008 बार करना है या 1,00,000 बार करना है। तो जब इतनी बार किसी मंत्र का जाप करना होता है तो हमारा मन जब मंत्र जपने लगता है, शुरू शुरू में तो मंत्र में बुद्धि जाती है और सांसारिक बातों से बुद्धि निकल जाती है तो हमें थोड़ी शांति का अनुभव होता है। मंत्र भी संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से बना है, मन प्लस त्र। त्र का अर्थ होता है मुक्ति। तो जो मन को मुक्ति दे वो मंत्र है। किससे मुक्ति दे? अशांति से, दुखों से मुक्ति दे, वो मंत्र है। तो थोड़ा सा शांति का अनुभव जरूर होता है, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ जाता है, कितनी बार ये मंत्र जपना है, तो योग भगवान के साथ नहीं। और दूसरी बात, मंत्र का अर्थ भी हमें नहीं पता होता है सामान्यता, क्योंकि संस्कृत आज की भाषा नहीं है, तो वो संस्कृत के मंत्रों का अर्थ हमें मालूम नहीं होता है कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, तो हमारे भाव उसके साथ जुड़ते नहीं है, तो वो सिर्फ मैकेनिकल होता है, यानी हमारे मुख से वो हम जप रहे हैं, तो थोड़ी देर में मन उससे बाहर आ जाता है और मन फिर अपना काम करना शुरू करता है, मुख मंत्र जपता रहता है। और योग पूरा गिनती के साथ होता है कि 108 बार हुआ कि नहीं, 1008 बार हुआ कि नहीं। मानो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः सत् सावितर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदया। अब पूरा संस्कृत में मंत्र है, कितने लोगों को इसका अर्थ मालूम होगा। या अगर हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करती हूँ या करता हूँ। तो अगर मैं शिव को नमन करती हूँ, ओम नमो शिवाय का हम जाप कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन, कौन शिव को नमन कर रहा है, और फिर शिव कौन है, कहाँ है। अगर मुझे यही नहीं मालूम है कि शिव कौन है, कहाँ है, तो क्या मेरा नमन उन तक पहुंचता है? तो इसीलिए वो मंत्र भी हमें सही फल नहीं दे पाते हैं, हमें भगवान तक नहीं पहुंचा पाते या उसकी शक्ति का हमें अनुभव नहीं करा पाते हैं। मंत्र का दूसरा अर्थ भी होता है सलाह देना, जैसे मंत्री माना सलाहकार। तो मंत्र में हम अपने मन को सलाह देते हैं कि मन को क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। राजयोग अभ्यास में जो संकल्प हम अपने मन को देते हैं, वो सभी संकल्प मंत्र की तरह हैं। मैं आत्मा हूं, ये भी हमने मन को सलाह दी कि मैं केवल ये भौतिक शरीर नहीं हूं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा स्वभाव से शांत स्वरूप हूं, ये भी हम मन को सलाह देते हैं, राय देते हैं, समझ देते हैं कि मेरा चिंतन किस तरह से चलना चाहिए। और इस तरह से हर विचार ही एक मंत्र की तरह काम करता है। हम कहेंगे भगवान हमसे सिर्फ एक संकल्प की दूरी पर है, अगर मन में हमने उनका चिंतन किया तो हम ईश्वर के साथ हैं। तो इस तरह से राजयोग स्वयं ही मंत्र की तरह कार्य करता है। अगर हमें किसी को याद करना है, भगवान को याद करने की बात करते हैं, तो इस संसार में भी यदि हम किसी को याद करते हैं तो वो चार बातें हमें सहयोग देती हैं, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप, लव एंड अटेनमेंट। किसी को भी याद करने के लिए उससे हमें परिचित होना जरूरी है। जिसको हम जानते नहीं हैं, जिससे हम परिचित नहीं हैं, उसको हम याद नहीं कर सकते। कर सकते हैं? इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, क्या हम सबको याद कर सकते हैं? हम केवल उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। परमात्मा को भी याद करने के लिए उसका परिचय होना आवश्यक है। आज तक हम समझते हैं अनेकों परमात्मा के रूप हैं, भगवान तो सब जगह है, कण कण में भगवान है, तो आखिर मन किसको याद करेगा? उसका सही परिचय ही आज तक हमें नहीं था। अभी परमात्मा का परिचय मिला आपको? आप सभी को परमात्मा का परिचय मिला? ईश्वर का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप क्या है? जी, ज्योति स्वरूप। तो अब हम उनसे परिचित हैं, तो परिचय होने के बाद उन्हें याद करना हमारे लिए सहज है। फिर दूसरा है ईश्वर के साथ हमारा संबंध हो, जैसे माता पिता आप चित्र में देख रहे हैं, एक बच्चे के लिए अपने पिता को याद करना बहुत सहज होता है, क्योंकि स्नेह का संबंध है, प्राप्ति का संबंध है, उसे सब प्राप्तियां अपने पिता से हैं, और उस संबंध के कारण स्नेह भी है, और स्नेह जितना अधिक होगा याद उतनी ही ज्यादा होगी। तो फिर चाहे वो पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, आपस में दोस्तों का संबंध है, जहां भी प्राप्ति है और स्नेह है वहां पर याद बहुत सहज होती है। दुनिया में हम तीन तरह की याद करते हैं। एक होता है याद करते हैं, दूसरा याद आती है, और तीसरा याद सताती है। याद हम उनको करते हैं जिनसे हम परिचित हैं और उनसे हमें कुछ काम होता है, तो हम समझते हैं ये हमें मिल जाए तो ये काम हमारा हो जाएगा, या कोई अवसर है, उत्सव है, हमें उन्हें अपने यहाँ निमंत्रण देना है, तो हम खास उन्हें याद करके निमंत्रण देते हैं कि अगर ये रह गए तो कहीं नाराज ना हो जाए। तो कहाँ भी कोई कार्य होता है तब हम याद करते हैं, या हम कहें स्वार्थ होता है तब हम याद करते हैं। याद आती वहां है जहां संबंध और स्नेह है और प्राप्ति है, और तीसरा हम कहेंगे याद सताती है। याद कब सताती है? जब कोई प्रियजन हमसे बिछुड़ जाते हैं या सदा के लिए अलग हो जाते हैं, तो जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो उनकी याद दुख देती है, मानो किसी की मृत्यु हो जाती है। अब हमें पता है कि जो चला गया वो कभी वापस आने वाला नहीं है, हम उन्हें जब भी याद करेंगे तो वो याद हमें दुख देगी। या बच्चा है कहीं बाहर हॉस्टल में पढ़ता है और आपको पता चलता है कि वो बीमार है, तो फिर उसको याद करके दुखी होंगे, तुरंत तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो पता नहीं उसने दवाई ली होगी, उसने खाया होगा नहीं खाया होगा, कौन उसकी संभाल कर रहा होगा। तो इस तरह से जो अलग है, दूर है और सहज नहीं मिल सकते हैं, उनको हम याद करते हैं, तो वो याद हमें सताने वाली याद होती है। इन तीनों प्रकार की याद में से परमात्मा की याद कौन सी याद होनी चाहिए? याद आने वाली याद होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय हम भगवान को याद करते हैं। आप कहेंगे आपको भगवान की याद आती है? कोई कहेंगे हमें भगवान की याद अपने आप आती है? नहीं, लेकिन समय पर हम उसे याद करते हैं। जैसे हम कहते हैं दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे न कोई। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई दुख की परिस्थिति या कोई मनोकामना की इच्छा में हम भगवान को याद करते हैं। बचपन से लेकर के हम आज तक स्वार्थ से ही भगवान को याद करते आए हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं। एक बच्चा होता है, पढ़ता है, उसे एग्जाम देने हैं, एग्जाम में पास होना है, भगवान को याद करते हैं, भगवान मुझे एग्जाम में पास कर देना, पास चलो पता है हो जाएंगे तो अच्छे नंबर आ जाए मेरे। फिर अगर पूरे एग्जाम पास हो गए, डिग्री मिल गई, अब अच्छी नौकरी लग जाए, उसके लिए भगवान को याद करते हैं। मानो अच्छी नौकरी भी लग गई, अब अच्छे घर में शादी हो जाए, उसके लिए भगवान को याद करते हैं। फिर शादी भी हो गई, अब अच्छा घर हो जाए, उसके लिए भगवान को याद करते हैं। फिर घर भी हो गया, अब एक अच्छी गाड़ी हो जाए, यानी जीवन में जो इच्छाएं हैं। फिर चलो बच्चे हैं, बच्चों की शादी हो जाए अच्छे घर में, फिर एक पोता हो जाए। माना पूरे जीवन काल हम कोई ना कोई इच्छा रख करके भगवान को याद करते रहते हैं और उससे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं हमेशा। तो तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती, हम सब इसके अनुभवी हैं। आपके सामने कोई भिखारी आता है तो आप कैसा समझते हैं? भिखारी को देखकर अच्छा लगता है ना? हम क्या सोचते हैं, ये तो कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्यों भीख मांगते हैं? तो यदि हमें मौका मिलता है तो हम जरूर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, और यदि हमें लगता है नहीं सचमुच ये दया का पात्र है, कोई ना कोई ऐसी कमी है कि इसको भीख मांगनी ही पड़ेगी, तो फिर हम अपनी पॉकेट में से कितना निकाल कर देते हैं, जो सबसे कम अमाउंट मेरे पॉकेट में है वो हम सबसे कम वाला नोट निकाल करके उस भिखारी को देते हैं। तो जब हम भगवान के सामने मांगने के लिए खड़े होते हैं तो क्या वो हमें जज नहीं करता होगा, जज नहीं करता होगा कि हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, हमारे कर्मों के अनुसार हमें वो उससे मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। पहले ही भगवान ने हमें बहुत दिया है। जो मानव जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, यानी मानव योनि में वो शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव कर सकता है। ऐसा जीवन भगवान ने हमें पहले ही दिया है, फिर भी हम संसार की छोटी छोटी चीजें जाकर के भगवान से मांगते रहते हैं, तो वो जरूर हमें जज करके ही देगा। तो यदि हमें मिलनी चाहिए तो मिलती है, नहीं मिलनी चाहिए तो फिर वो नहीं मिलेगी। लेकिन यदि भगवान के सामने हम अधिकारी हैं, मानो एक बच्चे और पिता का संबंध है, बालक और माता पिता का जो संबंध होता है, उस संबंध में बच्चे को मांगना नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे की जिम्मेवारी माँ बाप खुद समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि इसको क्या खाने को चाहिए, इसको क्या पहनने को चाहिए, इसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसका भविष्य कैसा होना चाहिए। कौन परवाह करता है, बच्चा परवाह करता है या माता पिता परवाह करते हैं? तो यदि हम ये समझते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूं, हम परमात्मा के बच्चे हैं और वो हमारा माता पिता है, तो हमें उससे मांगने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः ही हमारी परवाह करता है और जो हमें जीवन में चाहिए वो हमें प्राप्त होता रहता है। तो आज का जो ईश्वर के साथ हमारी याद और संबंध है वो याद करने वाली थी अभी तक, हाँ, लेकिन राजयोग में हमें परमात्मा की याद आती है क्योंकि उसके साथ हमारा समीप का संबंध होता है। माता पिता, शिक्षक, गुरु, बंधु, सखा, परमात्मा के साथ ये सब संबंध हम अनुभव करते हैं और संबंध समानता के आधार पर होता है। समाज में भी जब हम संबंध करते हैं तो हम समानता देखते हैं, जैसे कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर आपस में मिलते हैं तो बहुत जल्दी वो समीप आ जाते हैं, दो बच्चे आपस में मिलते हैं तो बहुत जल्दी समीप आ जाते हैं क्योंकि उनमें कुछ समानता है जो उन्हें समीप लाती है। तो ऐसे ही ईश्वर के साथ यदि हम समानता का अनुभव करते हैं तो वो संबंधों में समीपता सहज अनुभव होती है। ईश्वर के साथ हमारी तीन समानताएं हैं जिन्हें हम राजयोग में अनुभव करते हैं। पहली समानता है स्वरूप की समानता। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, और आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हम आत्मचिंतन करते हैं। आपने जो पिछले सत्रों में योग अभ्यास किया उसमें आपको ये अभ्यास कराया गया कि हम चिंतन ही प्रारंभ करते हैं, मैं आत्मा हूं। आत्मचिंतन से हम बॉडी कॉन्शियसनेस या देह भान से कुछ समय के लिए परे हो जाते हैं और हमारे मन की स्थिति परमात्मा की स्थिति के समान होती है। जैसे हम रेडियो को ट्यून करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन की फ्रिक्वेंसी है उसी फ्रिक्वेंसी पर हमारे सेट को हम ट्यून करते हैं तो हमें वो रेडियो स्टेशन सुनने में आता है। अगर फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो हम कितनी भी कोशिश कर लें हम नहीं सुन सकते। आप टीवी भी देखते हैं तो जब तक आप चैनल ट्यून नहीं करेंगे तब तक वो चैनल आप नहीं देख सकते हैं। तो भगवान जो है वो निराकार है, वो देहधारी नहीं है। उनकी फ्रिक्वेंसी और हम अगर देहधारी समझ करके परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे साथ मैच नहीं होती है और हमें परमात्मा शक्तियों का अनुभव नहीं होता है। जैसे हम दो तारों को भी जोड़ते हैं तो दोनों का रबड़ हटाते हैं और तार से तार को जोड़ा जाता है तब करंट फ्लो होती है। अगर रबड़ सहित जोड़ देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि वो रबड़ इंसुलेटर है। तो ऐसे ही ये जो शरीर है आत्मा के ऊपर ये एक आवरण की तरह है और अगर हम दैहिक स्मृति से परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा वो कनेक्शन ही ईश्वर के साथ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आत्मचिंतन करना, आत्मिक स्मृति में परमात्मा को याद करना, ये राज्यों का प्रथम चरण है जो ईश्वर के साथ हमारी समानता का अनुभव कराता है। फिर दूसरी समानता है परमात्मा के साथ, वो है स्थान धाम की समानता। यानी परमात्मा परम धाम निवासी हैं और हम सब आत्माओं का असली घर भी परम धाम है। परम धाम से हम इस सृष्टि पर आए हैं कर्म करने के लिए, तो ये सृष्टि तो एक रंगमंच की तरह है और जब हमारा ये पार्ट यहाँ का पूरा होगा तो हमें वापस अपने घर लौटना है। जैसे पिता और बच्चे का घर एक ही होता है, ऐसे परमात्मा और आत्मा का धाम निवास स्थान समान है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं हमारा मन परम धाम जाता है। मानो आप जहां से भी आए हैं, अगर आपके माता पिता वहां रहते हैं या आपके मित्र वहां रहते हैं और यहां आए हुए आप उन्हें याद करते हैं तो आपका मन कहां चला जाता है? क्या कहेंगे, उसी स्थान पर जाएगा जहां वो रहते हैं। तो ऐसे ही शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमारा मन कहां जाएगा? परम धाम में जाएगा। तो राजयोग के दूसरे चरण में हम अपने मन को परम धाम में ले जाते हैं क्योंकि परमात्मा परम धाम निवासी हैं और हम आत्माओं का भी निवास स्थान परम धाम है। राजयोग में तीसरी समानता ईश्वर के साथ हमारी गुणों की समानता है। परमात्मा सर्व गुणों में सागर के समान है और आत्मा उन्हीं गुणों का स्वरूप है। हम ईश्वर के गुणों का वर्णन ही करते हैं, गायन ही करते हैं कि वो प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, शांति के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है, सर्वशक्तिवान है, ऐसे ही गायन करते हैं। भक्ति मार्ग में हम जो प्रार्थना करते हैं या जो स्तुति करते हैं या आरती करते हैं वो सब क्या है? उनकी महिमा का गायन है। और आत्मा भी शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, शुद्ध और पवित्र स्वरूप है। तो योग अभ्यास के दौरान हम परमात्मा के उन गुणों का अनुभव शांति में स्थित होकर के मनन चिंतन से करते हैं। भक्ति में आज तक वो अनुभव हम वर्णन से करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं माना जोर जोर से हम ढोल मंजीरा साज बाज के साथ वो ईश्वर की महिमा का गान करते हैं, ऐसा ही करते हैं। करते तो ईश्वर की महिमा का ही गायन है लेकिन इस तरह से किया जाता है, वो रात का जागरण करेंगे या घर में कोई पाठ रखेंगे, रामायण रखेंगे, जो भी हम करेंगे वो हम हमेशा इस तरह से करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम एक दूसरे की बात बिना कहे नहीं सुन सकते, तो भगवान तक भी हमारे जो स्तुति है वो बिना वर्णन किए या बिना जोर से आवाज किए शायद नहीं पहुंचेगी। लेकिन राजयोग में हम ये अभ्यास जब शांति से मनन करते हुए करते हैं तो हमारी शक्तियां अंतर्मुखी होती हैं, वो शक्तियां जमा होती हैं और जीवन में परिवर्तन होता है। लेकिन जब भक्ति में हम वर्णन करते हैं तो शक्तियां बाह्य मुखी हो जाती हैं और कितना भी हम उसका वर्णन करते रहें लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, जीवन वहीं की वहीं रहती है। फिर अगर हम सागर के किनारे जाते हैं, मानो सागर ठंडक स्वतः ही देता है या सागर की जो हवा है वो हमें स्वतः ही मिलती है, वो हमें मांगना नहीं पड़ता है। हम ये कहें सागर मुझे ठंडक दे दो या हवा दे दो, लेकिन सागर के समीप जाते ही उसके गुण हमें अनुभव होने लगते हैं। आप अग्नि के पास बैठे हैं तो आपको गर्मी मांगनी नहीं पड़ेगी, अग्नि का गुण है वो और वो हमें उसके समीप होते ही स्वतः ही अनुभव होने लग जाता है। ऐसे ही जब परमधाम में मन परमात्मा के समीप है तो वो शांति के सागर हैं, वो सर्वशक्तिवान हैं, वो पवित्र हैं, सुखदाता हैं, तो स्वतः ही मन इन गुणों का अनुभव करने लगता है। हमें भगवान से मांगने की जरूरत नहीं कि भगवान मुझे शांति दे दो, हे भगवान मुझे शक्ति दे दो। कई बार कई भाई बहने कहते हैं कि बहन जी, जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त है, हमारे जीवन में कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन भगवान से हम शांति और सुख तो मांग सकते हैं। ये सब भौतिक चीजें ना मांगे, लेकिन शांति और सुख तो मांग सकते हैं, तो क्या ये भी मांगने की जरूरत है? लेकिन जब हम सही विधि से ईश्वर को याद करते हैं, तो राजयोग में हमें परमात्मा से ये भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अधिकार से हमें स्वतः ही अनुभव होने लगती है, तो उसमें हम अधिकारी बनने लगते हैं। शांति और सुख मन की स्थिति है, और वो चिंतन से हमें स्वतः ही अनुभव होती है। तो इस तरह से राजयोग में हम तीन चरणों में तीन चार चरणों में हम ये अभ्यास करते हैं, इनिशिएशन यानी प्रारंभिक अवस्था, मेडिटेशन मनन की अवस्था, कंसंट्रेशन एकाग्रता की अवस्था, और रियलाइजेशन अनुभूति की अवस्था। आप चित्र में भी देख रहे हैं, जब हम योग प्रारंभ करते हैं, माना आत्मचिंतन जब हम प्रारंभ करते हैं, तब हमारा मन सहज ही एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमें मन को दिशा देने का अभ्यास नहीं है, तो हमारा मन सांसारिक विचारों में उलझा हुआ रहता है। एक विचार आप देंगे मैं आत्मा हूं, और दूसरा विचार होगा अभी किससे बात करनी है, किससे मिलना है, या आज ये काम करना है। फिर आप सोचेंगे अभी तो हम योग के लिए बैठे हैं, ईश्वर के ध्यान के लिए बैठे हैं, फिर मन को वापस लेकर आएंगे, फिर आप एक संकल्प देंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, फिर मन खिसक जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था संघर्ष की स्थिति होती है। जब हम योग शुरू करते हैं तो हमारी एकाग्रता इतनी सहज नहीं होती, आप ये अनुभव कर रहे होंगे अभी जो दो दिन से आप यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। आप में से कोई है जो ऐसी एकाग्रता का अनुभव करते हैं? पहले से अभ्यास करते होंगे, या तो कोई ना कोई, अगर हम पहले से योग का अभ्यास करते हैं तो फिर वो एकाग्रता हमारे लिए सहज होती है, नहीं तो मन इधर उधर जाता है। लेकिन उस स्थिति से हमें घबराना नहीं है। कई बार आप आधा घंटा भी योग में बैठे, लेकिन एक मिनट भी आपका मन ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता है, या आत्मचिंतन में आप नहीं रह पाते हैं, तो हमें अभ्यास छोड़ना नहीं है। हम सोचने लगते हैं क्यों समय को व्यर्थ बर्बाद करें, आधा घंटा बैठे और ही ऐसे ऐसे विचार आने लग गए मन में जो पहले कभी नहीं आते थे, सिर भारी हो गया, सिर दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि मन को नकारात्मक सोचने की आदत पड़ी हुई है। तो जब हम योग में बैठते हैं, मन भगवान में नहीं लगा तो कहाँ लगा? दुनिया के लोगों में लगा, और उनकी अच्छी बुरी बातें हम सोचने लग गए, तो मन भारी होगा या हल्का होगा, शांति होगी या अशांति होगी, है ना? तो हमारा चिंतन ही सही नहीं चला। तो इसीलिए योग का दोष नहीं है कि हम योग में बैठे और हमारा मन भारी हो गया, लेकिन हमारी चिंतन की दिशा हम सही नहीं कर पाए। वो अभ्यास हमें करना है। मानो हम किसी दीवार को तोड़ते हैं और उसे तोड़ने में हमें 100 हथौड़े लगाने पड़ते हैं, और 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटती है, तो क्या हम कहेंगे कि पहले के 99 हथौड़े बेकार गए? हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटी। तो जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, वो हर अभ्यास भले ही हमें व्यर्थ नजर आ रहा है, लेकिन वो हमें सफलता की ओर ले जाता है। हर बार हम योग की ओर गहराई के समीप आते हैं, तो इसीलिए हमें अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए। भले हमारा योग नहीं लग रहा है, हम अगर उसे निरंतर करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें सफल हो जाते हैं, क्योंकि मन सूक्ष्म है। सूक्ष्म मन को इतना सहज दिशा देना आसान नहीं होता है। तो ये इनिशिएशन की जो स्टेज है, वो कई बार संघर्ष की स्थिति होती है जिसमें हमारी मान्यताओं का भी कई बार टकराव होता है। आपने राजयोग में जो विचार प्राप्त किए वो हो सकता है आपकी पुरानी मान्यताओं से मेल नहीं खाते हों, तो वो भी आपके विचारों में आ जाते हैं। हमने तो ऐसा समझा था, भगवान ऐसा है, भगवान का रूप ये है, या शास्त्रों में तो ऐसी बातें लिखी हुई हैं। फिर हम उन बातों को जब अपनी इन नई बातों से मिलाते हैं तो कहाँ ना कहाँ अपने ही विचारों का टकराव होता है। तो ये स्थिति थोड़ा समय योग में चलती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने मन को इन बातों से उठाकर मनन की अवस्था में ले जाते हैं, ज्ञान के मनन में मन बुद्धि को ले जाते हैं, परम धाम में अपने मन को ले जाते हैं, इस संसार से ऊपर, क्योंकि इस भौतिक जगत में जब तक मन रहेगा भौतिक संसार की बातें ही मन में ज्यादा चलती रहेंगी। तो योग अभ्यास में मन को हम इस संसार से पार, सूर्य चांद तारों से भी पार, परम धाम जहां संसार का कोई कर्म नहीं है, कोई विचार नहीं है, जो संपूर्ण शांति का धाम है, वहां हम मन को ले जाते हैं, जहां सिर्फ परमात्मा निवास करते हैं। तो मन जब परमात्मा के समीप होता है और उनके गुणों का हम स्मरण करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो हमें अनुभव होने लगता है। चिंतन के साथ साथ ही अनुभूति होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अनुभव करते हैं। अगर हम शांति का चिंतन कर रहे हैं कि परमात्मा शांति के सागर हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो अनुभव भी हमें शांति का ही होगा। तो इस तरह से वो एकाग्रता हमारी बनने लगती है और एकाग्रता से फिर अनुभूति की स्थिति हमारी होती है, जो कभी कभी कुछ पलों के लिए ही होती है, लेकिन वो पल इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो फिर हम आपको आगे जब भी आप योग अभ्यास करते हैं उसमें आपको मदद करते हैं, या वो स्थिति कुछ पलों की स्थिति आपको सारे दिन भी मदद कर सकती है। आपके कार्यों में उस स्थिति से आपको मदद मिलती है। तो ये योग राजयोग की अवस्थाएं, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था है, मेडिटेशन की अवस्था जब हम मनन करते हैं, मन को परम धाम में ले जाते हुए परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हैं, एकाग्रता की स्थिति और अनुभूति। और जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो कुछ सामान्य नियम हैं योग अभ्यास के। हमारी जो बैठक होनी चाहिए वो बैठक या तो पद्मासन या सुखासन, जिस स्थिति में हम 20 मिनट से 30 मिनट तक सहज रूप से बैठ सकें, हमारे शरीर को कोई कष्ट ना हो, स्थिर रूप से बैठा जाए, जिसमें हमारी जो स्पाइन है, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, वो हमारा स्थिर रहे और सीधा रहे, तो हमारी एकाग्रता सहज होती है। लेकिन आजकल जो बैठक के साधन हैं, ज्यादातर या तो कुर्सी या सोफा पर हम बैठते हैं, तो सुखासन या पद्मासन में बैठना संभव नहीं होता है। तो अगर इस स्थिति में भी हम बैठे हैं पर हमारा बैक सीधा हो और हम इस पोजीशन को लें ताकि हम 20 मिनट से आधा घंटा तक स्थिर रूप से बैठ सकें। ऐसा भी समझते हैं कि योग अभ्यास करना माना विचारों को बिल्कुल बंद कर देना, मन में कोई भी विचार ना चले, लेकिन मन की प्रकृति है सोचने की, मन में कोई ना कोई चिंतन अवश्य चलता है। हम मन को विचार शून्य नहीं कर सकते, लेकिन विचारों की दिशा अवश्य बदल सकते हैं। अगर हम मन को विचार शून्य करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आप कुछ पलों के लिए उसे विचार शून्य कर दें, लेकिन फिर जैसे ही विचार करने लगेंगे मन इतनी तेज गति से चलने लगेगा कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाया दब जाती है, लेकिन जैसे ही छोड़ा उतनी ही तेज गति से फिर वो वापस भी आती है। तो इसीलिए राजयोग में हम सहज गति से अपने मन को स्पिरिचुअल थॉट्स या आध्यात्मिक विचार देने लगते हैं। फिर ये भी एक राजयोग में या कोई भी प्रकार का जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि आंख बंद करके ध्यान करना है या आंख खोल करके ध्यान करना है। सामान्यतः आंख बंद करके हमें ध्यान करने का अभ्यास होता है। हम समझते हैं आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान अच्छा लगेगा, क्योंकि मन चारों तरफ से न्यारा हो जाता है। ऐसा होता भी है मंदिरों में भी, अगर हम मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं फिर जब हम मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने भाव प्रकट करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लेते हैं। और खासकर विशेष अवसरों पर या विशेष दिनों में ही हम मूर्ति के सामने जाते हैं, उन दिनों में इतनी भीड़ होती है मंदिर में कि आपको मूर्ति के सामने खड़े होने का अवसर कितना मिलता है, मुश्किल से एक मिनट भी नहीं मिलता है, कुछ सेकंड्स ही मिलते होंगे। और उसमें भी आप आंख बंद कर लेते हैं तो फिर कौन किसका दर्शन कर रहा है, आप उनके दर्शन कर रहे हैं या वो आपके दर्शन कर रहे हैं। तो राजयोग में, क्योंकि राजयोग कर्म योग है, जैसा हमने आपको बताया, कर्म करते हुए हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि ये एक संबंध से याद है। जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो क्या हम आंखें बंद कर लेते हैं? किसी इंसान को याद करते हुए आप आंखें बंद कर लेते हैं? तो भगवान भी हमारा पिता है, मात पिता शिक्षक, जो भी हम संबंध ईश्वर के साथ अनुभव करते हैं। तो जब हम संबंध से याद करते हैं, स्नेह से याद करते हैं, तो हमें आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं। और कर्म करते हुए यदि हम आंखें बंद कर लेंगे तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे। तो बैठक में भी जब हम बैठ करके ध्यान करते हैं तो भी हम आंख खोल करके परमात्मा को याद करने का अभ्यास करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर यही दुविधा होती है कि जब आंख खुली होती है तो अवश्य हमें सब कुछ दिखाई देता है, सब तरफ हमारा ध्यान जाता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या सामने है, क्या आवाज हो रही है, तो हमें ध्यान नहीं लगता है। लेकिन आंख बंद करके शुरू में तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ परमात्मा को ही याद करना है। लेकिन जब हम याद करते हैं, आंख बंद करते हैं, तो ये हमारा एक भ्रम होता है कि अब हम सब तरफ से कट गए। लेकिन जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो आंख बंद करने के साथ ही जागृत हो जाता है, क्योंकि आंख बंद करके हम सोते हैं। और जब हम सोते हैं तो हम सपने देखते हैं, देखते हैं सपने नहीं देखते हैं? तो यहां भी ऐसा होता है, जैसे ही आंख बंद होती है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें अनेक स्मृतियां भरी हुई हैं, वो स्मृतियां जागृत होने लगती हैं। और आप आंख बंद करके कहां के कहां पहुंच जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। वही कि योग में बैठे थे भगवान को याद करने, पता नहीं जो सोचा नहीं था वो सारी बातें भी याद आने लग गई, क्योंकि हमने अपने अवचेतन मन को जागृत कर लिया। फिर या फिर हम थके हुए हैं, आंख बंद करते ही 5 मिनट में, क्योंकि योग माना शांति, शांति से बैठे, थोड़ा शांति का अनुभव हुआ और हम सो जाएंगे, योग नहीं करेंगे लेकिन सो जाएंगे, वो राजयोग की बजाय निद्रा योग हो जाएगा। लेकिन जब हम आंख खोल करके अभ्यास करते हैं तो शुरू में जरूर डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है तो होता है डिस्ट्रैक्शन। लेकिन फिर भी खुली आंख से कर्म में मन को एकाग्र करने का अभ्यास हमारा है। आप कोई भी काम में लगे हुए हैं, पूरी तरह से बुद्धि उसमें है, आपके पास से कौन निकल गया, किसने क्या कहा, हमें सुनाई देता है या दिखाई देता है? हाँ, कोई पूछेगा आपसे कौन गया, आप कहेंगे मुझे पता नहीं, मैं तो इधर बिजी था, भले आंखें खुली थी फिर भी मैंने देखा नहीं। तो यहां भी मन जब दुनिया से पार हो जाता है, जब मन परमधाम पहुंच जाता है, परमात्मा के समीप मेरा मन है, तो इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या आवाज हो रही है, वो हमें सुनते हुए भी सुनाई नहीं देती और देखते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है। वो एकाग्रता हमारी होने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आंख खुली है या बंद है। लेकिन फिर भी ये इस तरह का हठयोग नहीं है, तो यदि हमें कुछ अनुभव हो रहा है अच्छी तरह से, कुछ विशेष हमें शक्ति की अनुभूति हो रही है, शांति की अनुभूति हो रही है, और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो हम आंख बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने सुविधा अनुसार राजयोग में आंखें बंद भी करते हैं और आंखें खोल करके भी अभ्यास करते हैं। कई बार हम सोचते हैं योग अभ्यास करना बहुत कठिन है। जरूर जो शुरू करते हैं इस अभ्यास को, उनके लिए कठिन प्रतीत होता है। दुनिया में भी, भौतिक रूप से भी, कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो वो हमें कठिन प्रतीत होता है। लेकिन जब हम अभ्यास करते जाते हैं, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो कार्य करते करते हम इतने कुशल हो जाते हैं कि वो हमें बिल्कुल फिर सहज लगने लगता है। ऐसे ही राजयोग का अभ्यास भी कुछ समय के अभ्यास के बाद हमें सहज लगने लगता है। वो याद परमात्मा की सहज याद हो जाती है, आने वाली याद, जो याद हमें आती है, हम करते नहीं है लेकिन भगवान की याद हमें आने लगती है। कई बार हम ये समझते हैं मेडिटेशन करना है तो बहुत अच्छा, लेकिन मेडिटेशन करते समय हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, ये भी अनुभव हो सकता है प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जब सचमुच योग साधना का अनुभव, जो आनंद, शांति, प्रेम परमात्मा से हमें अनुभव होने लगता है, उसके बाद हम वो समय तलाशने लगते हैं कि कब हमें समय मिले और कब हम बैठकर योग में वो अनुभव करें, अपने मन की उस उच्च स्थिति को हम अनुभव करें, तो ये परिवर्तन हम महसूस करते हैं। तो अभी हम कुछ समय, जैसे आप प्रतिदिन योग का अभ्यास करते रहे हैं पिछले दो दिनों से, तो अभी हम राजयोग का अभ्यास आपको कमेंट्री के द्वारा कराएंगे। जैसे विचार मैं आपको दूंगी, उन विचारों का आप अनुसरण करेंगे और आपकी बैठक, जैसा आपको बताया, बिल्कुल सीधे होकर के पीठ सीधी रखें और आंख खुली करके योग का अभ्यास करने का प्रयास करें। सामने जो ज्योति बिंदु दिखाई देता है, उस ज्योति बिंदु पर मन को एकाग्र करें या उसे देखते हुए अभ्यास करें। तो हम इन सभी को प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग करते हैं, हम मन को एकाग्र करने में हमें सहयोग मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जब परमात्मा की याद सहज होने लगती है, तो फिर आवश्यकता नहीं है कि हम इन आधारों का प्रयोग करें। अपने मन को, अपने आसपास के वातावरण, व्यक्तियों और आवाजों से समेटते हुए अंतर्मुखी हो जाए। भ्रकुटी में, मस्तक के मध्य में आत्मा को देखें। मैं एक चैतन्य दिव्य शक्ति आत्मा हूं, एक चमकते हुए सितारे के समान, अचर, अमर, अविनाशी प्रकाश पुंज हूं। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने इस भौतिक देह का आधार लिया है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। ये सृष्टि एक विशाल रंगमंच है और मैं आत्मा एक पार्थधारी हूं। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार, परम धाम ब्रह्मलोक है, जहां संपूर्ण शांति है। सुनहरी लाल प्रकाश के इस पवित्र दिव्य धाम में मेरे परम पिता परमात्मा शिव भी निवास करते हैं। शिव बाबा भी मेरे ही समान रूप में ज्योतिर्बिंदु, लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। मैं स्वयं को मन और बुद्धि के द्वारा परम धाम में शिव बाबा के समीप अनुभव कर रही हूं। वो शांति के सागर हैं, वो शांति के प्रकंपन, मुझे भी शांति का अनुभव करा रहे हैं। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, सदा सर्व के सुख के दाता हैं। ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, ईश्वरीय शक्तियों के अनुभव से मैं स्वयं को समर्थ अनुभव कर रही हूं। शिव बाबा ही मेरे सच्चे मात पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। मुझे सद्बुद्धि देने वाले हैं, मेरे परम हितैषी मार्गदर्शक हैं। सर्व के कल्याणकारी सतगति दाता हैं। मुझे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। शिव बाबा से शांति, पवित्रता और शक्ति का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः इस भौतिक जगत में अनुभव कर रही हूं, लेकिन अब मेरा मन परिवर्तन हो चुका है और इस शांति की अनुभूति का मैं अपने कार्य व्यवहार में भी अन्य आत्माओं के संपर्क में आते हुए पूरी दिनचर्या में प्रयोग करूंगी। ओम शांति शांति शांति।